السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف. کیا چیز وحی کی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کریم جو وحی کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف. تو پہلے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی آیات میں کتاب کی تلاوت کی بات آئی، ان لوگوں کی بات آئی جو اصل علماء ہیں، اور کتاب کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلی. اب ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جن کو اس کتاب کے لیے چن لیا گیا، جو اس کتاب کے وارث بنے. یعنی وارث بننا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جیسے کہ مال کی وراثت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کے وارث ایک کے بعد دوسرے انسان بنے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے ورثاء جو ہوتے ہیں، انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے نا، تو انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں. تو آپ کے بعد آپ سے صحابہ نے لیا قرآن کو، ان کے بعد تابعین نے، ان کے بعد تبع تابعین نے، ان کے بعد کے لوگوں نے، ان کے بعد کے لوگوں نے، اس طرح کرتے کرتے ہم تک پہنچا. تو یہ وراثت ہے نا، وراثت اسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ نے کمائی نہیں ہے لیکن وہ آپ تک پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز وحی کی ہم نے جو آپ کی طرف، من الکتابی کتاب میں سے، ہو الحق وہ حق ہے، مصدقا لما بین یدی تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے گزری ہے، یعنی دوسری کتابیں. یعنی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، پیچھے سے ہی کتاب کی بات آپ دیکھیں چل رہی ہے نا. تو یہ کتاب، اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ کتاب کیسی ہے. یہ وحی کی گئی جو آپ کی طرف نا، یہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے، اس کے اندر ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو پچھلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان میں آپ کو پتا ہے کتنی ساری تحریف ہو گئی، چینجز ہو گئیں. لہٰذا یہ کتاب ان کے اندر جو صحیح باتیں ہیں ان کو ویریفائی کرتی ہے، اور جو ان میں غلط باتیں لوگوں نے شامل کر لی ہیں ان کے بارے میں اس کتاب سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ باتیں صحیح نہیں ہیں، بعد میں شامل کی گئی ہیں. لہٰذا یہ کتاب کامل کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے یہ کافی ہے. اب پچھلی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ یہ تصدیق کر دیتی پچھلی. اگر اس میں کوئی چیز صحیح ہے تو پھر آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا، اگر اس میں کوئی چیز نیو ایڈیشن ہے تب بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ قرآن بتا دیتا ہے، وضاحت کر دیتا ہے. تو ایک تو یہاں پہ بتایا گیا اس آیت میں کہ یہ قرآن حق ہے. حق کا مطلب کیا؟ بالکل سچ ہے، اور حقیقت بھی اسی سے ہی ہے. حقیقت کا لفظ بھی سے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ ریالٹی کو آپ کے سامنے رکھتا ہے. ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ڈرامے ہیں، افسانے ہیں، ناول ہیں، سنی سنائی اور ایسے ہی سوچی ہوئی باتیں بس لوگ اپنے دماغ سے کرتے رہتے ہیں. کوئی فلمیں بنا لیتا ہے، وہ بھی خود ہی سوچ سوچ کے دماغ میں کوئی سٹوری لا کے اس کو کر دیا. لیکن قرآن پاک ایسے نہیں ہے. قرآن پاک میں جو بات بھی ہے نا، وہ یوں ہی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پکڑ کے نہیں ہے، بلکہ سب چیز وہ ہے جو حقیقت ہے. کوئی افسانہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ایسے ہی باتیں نہیں کی گئی چلو دل کے بہلاوے کے لیے کچھ باتیں کر دی جائیں. कोई ऐसे बातें नहीं की गई कि जो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए कर दी जाए, नहीं, सब हकीकत पे मबनी, यानी इसमें हकाई रियलिटीज है, ठीक है, चाहे वो इंसान की जिंदगी के बारे में हो, आखरत के बारे में हो, इस दुनिया की जिंदगी बारे में हो या आखरत की जिंदगी बारे में, चाहे इबादात के बारे में हो, चाहे इंसान की सोशल लाइफ है, चाहे इंसान की पर्सनल उसकी जिंदगी है, हर तरह की जो इंसानों से मुतालिक उनके फायदे की बात है वो इसके अंदर बयान कर दी गई, और हर तरह के जो नुकसानात उसको पहुंच सकते हैं उनसे उसको बचने के लिए ताकीद इसमें कर दी गई। तो ये हकीकत है, लिहाजा कोई इसके बारे में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। और कब तक के लिए है ये हकीकत, क्या सिर्फ उस जमाने के लिए थी या कयामत तक के लिए, सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि जब फिर हम इसके अहकामात को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ये तो उस जमाने के लिए है, ये आज के लिए तो नहीं है। अल्लाह के कह दिया गया ये हक है, ठीक है, ये हकीकत, उस वो हकीकत इस किताब ने बयान की है जो कयामत तक के लिए हकीकत है। ऐसे नहीं हो जाएगा कि ये एक्सपायर हो जाए, इसकी कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं है। हाँ, पिछली किताबें एक्सपायर हो गई जब उनके जो पैगंबर थे जिन पे वो आई थी, जब वो चले गए तो वो किताबें भी अब इस काबिल नहीं रही कि अब उनके ऊपर अमल किया जाए, इसलिए अल्लाह ताला ने ये कुरान नाजिल किया कि ये कयामत तक के लिए है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कब तक के लिए, कयामत तक के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए लेकिन आपकी रिसालत कायम है और आपकी रिसालत चलती ही रहेगी। अब जो आपके रसूल होने पर ईमान लेकर आया वही निजात पा सकेगा, ठीक है। दूसरे अंबिया का यह था कि वो अपने टाइम के लिए थे और अपनी कौमों के लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत यह कि आप ना सिर्फ अरब के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजे। बल्कि कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि ऐ नबी आप कह दीजिए, या यूहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए लोगों मैं तुम सब के लिए रसूल बना के भेजूंगा, कुल कह के कह दीजिए ऐ नबी आप ये सबको बता दें। तो जैसे आपकी रिसालत कयामत तक के लिए है तो वो कायम कैसे रहेगी, जो कलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया और उस इसको कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने लोगों की रहनुमाई का जरिया बना दिया। इसीलिए ये कभी एक्सपायर नहीं होगी, इसीलिए इसके अहकामात हमेशा तक के लिए। इसीलिए आप कभी डाउट ना करें कि अल्लाह पता नहीं ये अब तो चल ही नहीं सकती ये चीज़ें, अब तो सूद कैसे उससे हम निजात पा सकते हैं, अब तो सूद के ऊपर ही इकोनॉमी चलती है, तो ये तो कुरान की बातें तो पहले की हैं, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। तो सच्ची है, हकीकत पे मबनी है, और हक का एक माना बामकसद होना भी होता है, बामकसद है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बस इधर उधर की बातें करके तो थोड़ी देर इंसान पढ़ ले तो मजा आ गया भाई चलो, मकसद है इसका, ठीक है। और तस्दीक करती चूंकि पहली किताबों की, तो अब फिर पहली किताबों की जरूरत है कि आप उनको अब पढ़ें। अब कोई कहे मुझे बड़ा शौक है तो मैं जाके जी पिछली किताबों को जरा उनको देखूं कि उनमें क्या लिखा हुआ है, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है कि आप पिछली किताबों को पढ़ें, इसलिए कि ये उनमें जो सही बात है उसकी तस्दीक कर देती है। हाँ, जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, जिन लोगों ने उनके साथ बात करनी होती है उन किताब के हामिलीन के साथ, यहूद और नसारा के साथ, वो उन किताबों को पढ़ सकते हैं, उनके अंदर से वो बातें देख सकते हैं कि जिनको उनको जवाब देना है। लेकिन कोई हिदायत के लिए अगर वो किताब निकाल लें कि मैं अब उनसे भी हिदायत लूँ, पता नहीं उनमें कितनी अच्छी अच्छी बातें, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और ये किसकी तरफ से, इन अल्लाह बिअबादिही लखबीरुन बसीर, अल्लाह ताला बाखबर भी है। बाखबर वो होता है जो बारीक इल्म रखता है, हर चीज की इन एंड आउट खबर रखता है, जानता है उसको, बसीर जो देखने वाला है। और हम तो सिर्फ सतही तौर पे देखते हैं ना, एक चीज मुझे सामने नजर आ रही है कि ये मिसाल के तौर पे ये यानी को बड़ा खूबसूरत सीन है, लेकिन वो शीशा है, और उसके अंदर कोई स्क्रीन है जो चल रही है, तो हम सिर्फ सतही चीज देख सकते हैं। अल्लाह ताला इन एंड आउट सब चीज को देखने वाला है। तो इसमें एक तरह से इंसान के लिए डरावा भी है कि अल्लाह ताला देखता भी है और खबर भी रखता है, और इसमें तरगीब भी है कि वो देखता है, तुम अल्लाह के लिए ही सब काम करो, वो देखने वाला है, कोई और नहीं देखता, कोई मसला नहीं, किसी और को नहीं पता चलता, मगर उस बाखबर को पता है, वो अपने बंदों के ऊपर बाखबर है, उनकी सारी बातों को जानता है। तो अल्लाह ताला का इल्म इतना वसी है कि कोई चीज उससे छुपी भी नहीं है। सुम्मा औरसनल किताबा, फिर इस किताब का हमने वारिस बनाया, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि विरासत क्या होती है, वो जो एक से दूसरे तक मुंतकिल हो, तो ये किताब भी हम तक मुंतकिल हुई, ये किताब हम तक आई। क्या जब सहाबा कराम से आगे चलती भी हम तक पहुंची है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से जिसको चुना उस तक इस किताब को पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहुंची, आपके बाद आपकी उम्मत को अल्लाह ताला ने ये अता फरमाई। क्या हमारे किसी अमल की वजह से, क्या हमारे किसी बहुत बड़े कारनामे की वजह से? नहीं। याद रखें, विरासत का मतलब ये होता है कि आपने इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की है, या आपको बस अल्लाह की तरफ से मिल गई। जैसे कोई विरासत छोड़ जाता है तो अब आपको तो मुफ्त में मिल गई ना। तो हदीस में आता है कि अंबिया दिरहम और दीनार की विरासत नहीं छोड़ते, उनकी विरासत वो इल्म है, जो इल्म वही है, और जैसे मैंने आपको बताया उलमा वारिस है अंबिया के। तो लिहाजा ये किताब हमको विरासत में मिली, और ये किसकी विरासत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनसे मोहब्बत के दावे तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन उनकी छोड़ी हुई विरासत की कोई कदर नहीं है हमारे अंदर कि ये कितनी बड़ी दौलत है जो हमें मिल गई। वैसे किसी की मिलियन डॉलर की विरासत हो तो वो कितना भागेगा उसको लेने के लिए, ये जी फलां मेरे तो फलां की विरासत है, चाहे वो कोई दूर का ही रिश्तेदार हो, मगर किसी तरह अगर मुझे मिलनी हो तो भाग भाग के लेंगे। लेकिन इस किताब की विरासत को कोई इतनी खास अहमियत नहीं देता, कुछ खास समझता नहीं है इसको। तो ये विरासत किसकी है? नबी अलैहिस्सलाम ने छोड़ी है ये विरासत हमारे लिए, जो आगे से आगे मुंतकिल होते होते हम तक पहुंची है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लदीन अस्तफईना मिन इबादिना, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर वारिस बनाया हमने इस किताब का उन लोगों को जिनको हमने चुन लिया अपने बंदों में से, यानी चुने वे बंदों, अल्लाह ताला का इंतखाब है, यानी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला का इंतखाब है। लेकिन फिर जो वारिस होते हैं, तो कुछ वारिस बड़े नाहंजार वारिस भी होते हैं, कुछ वारिस विरासत को जाया कर देते हैं, कुछ वारिस ऐसे होते हैं जो विरासत की बड़ी कदर करते हैं। देखा ना आपने दुनिया में भी, जब किसी को विरासत से पैसा मिलता है तो वो बाज लोग तो उसको बिल्कुल ही जाया कर देते हैं, कुछ उसकी कदर करते हैं। तो इसी तरह इस विरासत के पाने वाले भी सब एक जैसे नहीं थे, उनके अंदर भी कैटेगरीज है, उनके अंदर भी ऐसी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस विरासत की बड़ी कदरदानी की। तो वो अब यहाँ पे बयान फरमाया जा रहा है कि तीन किस्म के लोग हैं जो इसके वारिस बने, तीन किस्म के यानी लोग हैं जो हम समझ सकते हैं कि जिन्होंने, जिनको विरासत मिली तो उन्होंने उस विरासत के साथ क्या किया। ये तीन किस्म के लोग हैं, बिल्कुल आप इसको ऐसे समझें जैसे एक क्लास में तीन किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जो बिल्कुल नालायक, कुछ नहीं करने वाले, कोई एफर्ट नहीं करनी, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट वो भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट के बिल्कुल ही तवज्जो नहीं देते। दूसरे दरमियाने दरमियाने जो बस पासिंग मार्क्स लेने के चक्कर में होते हैं, चलो पास तो हो गए ना तो क्या फर्क पड़ता है। और तीसरे वो होते हैं जो एक्सलेंस के लेवल पे जाने के लिए जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की उनकी कोशिश होती है हमेशा। सिमिलरली आप ये समझ लें कि किताब के जो वारिस बने, अल्लाह ताला ने ये किताब की विरासत उम्मत मुहम्मदिया को दे दी, राइट। अब इसके अंदर भी तीन तरह के ही लोग हैं, फमिनहुम जालिमुन लिनफ्सी, पहले ही बताया गया वो हैं जो जुल्म करने वाले अपनी जान पर, व मिनहुम मुक्तसिदुन, दूसरे वो हैं जो कि दरमियाना दरमियाना चलने वाले, जैसे मैंने आपको बताया एवरेज स्टूडेंट्स, व मिनहुम साबिकुम बिल खैराती भी इज़्निल्लाह, और उनमें ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ने वाले, किस में, इस चीज में आगे बढ़ने वाले, पैसे इकट्ठे करने में नहीं, नेकियों में भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़न से, अल्लाह ताला की इजाजत से, अल्लाह की तौफीक से, जिसको हम कहेंगे। तो ये हैं वो तीन किस्म के लोग, सबसे पहले यानी जिनको किताब की विरासत मिली, सबसे पहले उन लोगों को मेंशन किया गया जो जालिमुन लिनफ्सी थे, यानी जिन्होंने इस किताब का वैसे हक अदा नहीं किया जैसे कि करना चाहिए था, ठीक है। अल्लाह ताला ने तो चुन लिया ना, इस्तफ़ीना, चुने हुए लोग हैं जिनको अल्लाह ने वारिस बना दिया। देखो, मुफ्त में बैठे बिठाए तुम वारिस बन गए, इतनी कीमती विरासत तुम्हें मिल गई, लेकिन फिर भी कुछ अपनी जानों पे जुल्म कर देते, कैसे कि इसको जहन्नुम से बचाने की कोशिश नहीं करते। गुनाह करके इंसान अपनी जान पे जुल्म करता है ना, असल में जब इंसान गुनाह कर रहा होता है तो अपना नुकसान कर रहा है ना, जान का तो हक ये था। देखिए जुल्म क्या होता है, किस चीज को उसका हक ना देना, जान का, हमारी जानों का हमारे ऊपर ये हक है कि हम इनको, अपनी जान को तो बचा लें जहन्नुम से, मगर जुल्म करना अपनी जान के ऊपर क्या है, इंसान गुनाह करे, फराए छोड़ दे, अल्लाह की हदें तोड़ दे, तो ये जुल्म है अपनी जान पे। तो जो कुछ वारिस थे वो नहीं करते थे जो कहा जा रहा है, वो फराइज में कोताही करते थे, गुनाहों के काम करते थे, इस तरह से वो अपनी जानों पे जुल्म करते थे। फराइज क्या हैं, जैसे नमाज, रोजा, जकात, हज, क्या ये फराइज है ना। अब वो मुसलमान तो हैं, उम्मत मुस्लिमा में से तो हैं, लेकिन नमाज छोड़े हुए हैं, या जकात अदा नहीं करते टाइम पे, या हज की इस्तात भी है लेकिन हज नहीं करना। फिर मुख्तसिद कौन है, मयानारो, दरमियाने चलने वाले, फराइज पूरे करते हैं मगर इसके अलावा और कुछ नहीं करते, फराइज बस अदा कर लेंगे। जैसे वो एक शख्स आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और उसने ये पूछा था ना कि मेरे पर क्या चीजें हैं जो फर्ज हैं बिल्कुल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पांच अरकान बताए इस्लाम के, तो उसने कहा कि बस मैं ये करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा। तो ये भी ठीक ही है, लेकिन ये दरमियाने चलने वाले हैं, और अक्सर लोग यही हदीस लेके सोचते हैं कि बस ठीक है ना, इसके ऊपर भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर ये करता रहा तो ये जन्नत में जाएगा, तो फिर हम भी यही सिर्फ करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर बात आएगी, अभी ये दरमियाना चलने वाले हैं, सिर्फ फर्ज फर्ज अदा करते हैं, ये मुख्तसिद हो गए, दरमियानी एवरेज स्टूडेंट, जो पासिंग मार्क्स बस लेने के चक्कर में रहते हैं। तीसरे नंबर पे वो हैं जो साबिकुन बिल खैरात हैं, फर्ज ही नहीं अदा करते बल्कि इसके साथ नवाफिल भी, सुन्नतें भी, मुस्तहबात भी, हराम को ही नहीं छोड़ते बल्कि मकरूह चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, शक वाली चीज़ों को भी छोड़ देते हैं, और दिन में सिर्फ उनको फराइज अदा करने की नहीं फिक्र होती, क़यामुल लैल भी करते हैं, चाश की नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े सिर्फ रमज़ान के नहीं रखते, वो और भी रोज़े रखते हैं, शव्वाल के रोज़े रखते हैं, मुहर्रम के रोज़े रखते हैं, ज़िलहज में रोज़े रख लेते हैं, फिर इस तरह शाबान में रोज़े रख लेते हैं, या हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रख लेते हैं, या अय्याम बईद के रोज़े रख लेते हैं। तो इस तरह के लोग यानी वो आगे बढ़ के और भी करते हैं, ये नहीं कहते बस सिर्फ फ़र्ज़ हमने अदा कर दिया ना, इससे आगे क्या, जैसे अब बच्चे कभी नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं इससे आगे सुन्नतें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नफल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये क्या ज़रूरत है, बस फ़र्ज़ कर ली है ना हमने। तो लेकिन ये लोग इससे आगे बढ़ के वो करते हैं कि उनको इस पे नहीं चैन है, वो उससे आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरह ज़कात ही नहीं अदा करते बल्कि सदकात भी देते हैं और भी ज़्यादा करते हैं, सिर्फ एक हज करके नहीं बैठ जाते बल्कि पैदर पे उम्रे भी करते रहते हैं। तो वो सारी ही चीज़ों में ना आगे आगे बढ़ने की कोशिशें करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लेने के शौकीन नहीं होते, बल्कि वो कहते हैं हमारी कोई मतलब डिस्टिंक्शन आए, कोई हम हमें कोई अवार्ड मिले, हम आगे बढ़ने वाले ए ग्रेडर हो जाएं, या हम बिल्कुल लायक वाले ट्रॉफी लेने वाले स्टूडेंट्स में से हो जाएं। तो इस तरह हर एक की अपनी अपनी कोशिशें होती हैं ना। जैसे दुनिया में कुछ लोग हैं जो मिसाल के तौर पे अनपढ़ ही रह जाते हैं, कमाना तो वो भी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हैं वो जो 10-12 जमातें पास कर ली तो कहते हैं बस ठीक है इतना ही पढ़ लिया, वो भी कुछ ना कुछ कमाने लगते ही हैं, कहीं ना कहीं लग जाते हैं, कोई क्लर्क लग गया, कोई छोटी मोटी कहीं जॉब कर ली। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इससे भी आगे बढ़े, वो मास्टर्स PhD और डॉक्टरेट की और चीज़ें बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए कोशिशें करते हैं। अब उनकी कोशिश और मेहनत ज़्यादा होती है। तो दुनिया की चीज़ों में जैसे कि ये होता है, इसी तरह आप देखें कि किताब के वारिस भी ऐसे लोग हैं जो कुछ निकम्मे से ही ज़रा रहते हैं, वो भी वारिस लेकिन वो निकम्मे रहे, और कुछ दरमियाने और कुछ आगे बढ़ने वाले। तो क्या आप सोचते हैं कि सब कयामत के दिन एक साथ ही होंगे? नहीं ना, अल्लाह ताला के हाँ इंसाफ है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर फरमाया, वो लोग जो नेकियों में सबकत करने वाले हैं सो वो जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल हो जाएंगे, रहे वो जो मुक्तसिद हैं तो उनसे आसान हिसाब लिया जाएगा, यानी पूछा तो जाएगा लेकिन जरा इजी उनके ऊपर रहा जाएगा, और वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया सो इन लोगों को मैदान माशर में कैद रखा जाएगा, फिर अल्लाह ताला की रहमत उनके ऊपर होगी और फिर वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न। ये आगे बात आ रही है। तो क्योंकि देखे आगे जो कहा गया, जिस तरह इस आयत को मुकम्मल किया गया, खास तौर पे मैंने आपको लिखवाया कि सब के सब, इसीलिए लिखवाया कि ज़ालिका हुवा फ़ज़लुल कबीर, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, जन्नतु अदनिन यदखुलूनहा, जन्नत अदन में यानी हमेश की जन्नत में, ये यहाँ पे कोई नाम नहीं है जन्नत अदन बल्कि हमेश की जन्नत में सारे ही दाखिल हो जाएंगे, ये सभी जाएंगे, लेकिन कुछ जो हैं वो भागे भागे चले जाएंगे। जैसे दुनिया में नेकियों के लिए भागते थे ना, तो वहां पर भी भाग भाग के चलते चले जाएंगे, हिसाब नहीं देना पड़ेगा, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। और कुछ जो हैं उनको तो हिसाब देना पड़ रहा है, लेकिन चलो हिसाब से खलासी हो गई, शुक्र है वो भी आ गए, लेकिन हिसाब का मरहला भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो दुनिया में भी एवरेज चलते थे, बस दरमियाने चलते थे ना, तो इसलिए। और तीसरे वो लोग हैं जो दुनिया में पीछे रहे, तो फिर अब वो पीछे रहे नेकियों के अंदर, गुनाह भी करते रहे, उन्होंने फराइज भी छोड़ दिए, अल्लाह ताला चाहे तो उनको हशर में 50,000 साल तक खड़ा करके उसके बाद जन्नत में भेज दे, अल्लाह ताला चाहे तो उनको जहन्नुम में डाल के पाक करके, जब अब कितने अरसे तक जहन्नुम में डाला जाएगा वो हमें कुछ नहीं पता, डिपेंड्स ऑन के किसके कितने गुनाह हैं या कितने उसने फराइज छोड़े हुए, किस किस्म के किस नौयत के उसने गुनाह किए हुए, तो उसको माफ़ी हशर के मैदान में नहीं मिली, वो जहन्नुम में डाला गया, वहां पर वो पाक साफ किया गया, अजाब सहकर, फिर उसके बाद आपको पता है ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिफात करेंगे, तो वो बंदा भी निकल जाएगा जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी ईमान था, वो भी जहन्नुम से निकल जाएगा। मगर कब निकलेगा? 1,000 साल बाद, 10,000 साल बाद, 50,000 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ पता नहीं है हमें, मगर ये हमें जरूर पता है कि निकल जाएंगे एक दिन, क्योंकि उनके अंदर ईमान था। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो इसलिए जो जालिमुन लिनफ्सी, उन्होंने जुल्म किया। अच्छा आप ये बताइए, सबसे पहले उनकी बात क्यों आई? सबसे पहले उनकी बात आई, फिर उसके बाद दरमियानों की, फिर साबिक मिल खैरात की, क्यों? اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ظلم کرنے والی اپنی جانوں پر نا یہ سب سے زیادہ ہوں گے، ان سے کم درمیانے اور ان سے بھی کم سابق، جیسے کہ سورۃ الواقعہ میں ہے نا، وہ جو سابقون الاولون ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہوں گے، وہ قلیل ہوں گے، ٹھیک ہے، اور درمیانے والے تھوڑے زیادہ ہوں گے، اور بہت زیادہ ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا اپنی جانوں پر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تینوں جنتی ہیں، ان میں سے سابقون بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گئے، جن کے جنتی ہونے کی شہادت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، مقتصد وہ ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلے اور سابقین کی اقتدا میں قائم رہے، ساری زندگی ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے۔ جیسے اب میں شروع میں دعا پڑھتی ہوں نا کہ صلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، جنہوں نے ان کا اتباع کیا احسان کے ساتھ، اس درجے کے ساتھ قیامت کے دن تک جتنے بھی آنے والے ہیں، جو اور اسی راستے پر چلتے رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صحابہ کا راستہ تھا، تو وہ بھی جنتی ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ باقی کہتی ہیں ظالم لنفسی، تو ہم تم جیسے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی دیکھیں کہ اپنے آپ کو تیسرے درجے میں شامل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں سابقون بالخیرات جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچے درجوں والے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے عملوں کو درمیانہ رکھا، کبھی اچھے بھی کر لیے کبھی برے بھی کر لیے، دونوں طرح کے اعمال تھے ان کے پاس، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ گیا، نیکیاں بھی کی لیکن ساتھ گناہ بھی ہوتے گئے، یہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی بہت ساری تفسیریں آپ دیکھیں گے جو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ لکھتے جائیں۔ اگر آپ اوپر لکھ لیں نا، تین کالم بنا لیں، ظالم، مقتصد اور سابق، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ ایک ایک کر کے یہ ساری تفسیریں لکھتے رہیں گے تو آپ کے پاس ساری ہی آ جائیں گی۔ بعض علماء کہتے ہیں ظالم وہ جس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے، مقتصد وہ جس کی نیکیاں گناہوں سے برابر ہو گئیں، اور سابق وہ جس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ گئیں، ٹھیک ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں سابق مخلص مومن ہے، مقتصد کچھ ریاکاری بھی کہیں کر لیتا ہے، اور ظالم تو بالکل نہ شکرہ ہے نہ قدرہ ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ پھر ایک اور قول ہے کہ ظالم وہ ہے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ مقتصد وہ ہے جو زبان سے بھی اقرار کرتا ہے عمل سے بھی، اور سابق وہ ہے جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اعضاء سے اطاعت بھی کرتا ہے، اور اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص بھی کرتا ہے۔ پھر ایک اور قول بھی ہے کہ ظالم وہ ہے جو صرف اس قرآن کی قراءت کرتا ہے، میں نے آپ کو قراءت کا مطلب بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم، اور پھر یہ کہ یہ کتاب کے وارث ہیں، یہ کچھ ہیں جو کتاب کی صرف پڑھائی کرتے ہیں۔ مقتصد وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے، علم بھی رکھتا ہے، اور سابق وہ ہے جو قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا علم بھی رکھتا ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو ہم بھی قرآن پاک کے معاملے میں کیسے ہیں تینوں میں سے؟ پھر ایک علماء نے گناہوں کے اعتبار سے بھی یہ تینوں کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ ظالم وہ ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، مقتصد وہ ہے جو صغیرہ گناہ کرتا ہے، اور سابق وہ ہے جو نہ کبیرہ کرتا ہے نہ صغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر علم کے اعتبار سے بھی تین کیٹیگریز کی گئی کہ سابق علماء ہیں، علماء جو اس واقعی اس کتاب کے عالم ہیں، اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء امت سے خطاب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے سینوں میں اپنا علم اور حکمت صرف اسی لیے رکھا تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ تمہاری مغفرت کر دوں، اللہم اجعلنا منہم۔